मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे लाइफ मिशन के बारे में बातें करने जा रहा हूं और अपेक्षाकृत थोड़े विस्तार के साथ इसलिए कि आज मुझे कोई ऐसी दूसरी खबर नहीं मिली है जिसे मैं इसमें शामिल कर सकूं, और फिर मुझे लगा कि नहीं, यह टॉपिक अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे इस पर स्वतंत्र रूप से और अपेक्षाकृत विस्तार के साथ आपसे बात करनी चाहिए। टॉपिक है लाइफ मिशन। नो डाउट कि यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन यह आपका जो फोर्थ पेपर है मेंस का, उससे जुड़ा हुआ विषय भी है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अर्थशास्त्र से भी जुड़ा हुआ विषय है। और यदि कोई विषय आपके अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ हो तो आप उसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, यह विषय हम सबके जीवन से भी जुड़ा हुआ है, और यहां तक कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि मुझे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है, इसलिए इस पर मैंने स्वतंत्र रूप से चर्चा करने का फैसला किया। यदि आपको 20 अक्टूबर की तिथि याद हो, इसी महीने की 20 अक्टूबर, तो आपको ध्यान होगा, अगर आपने ध्यान से सुना, उस समय मेरा जो डेली ऑडियो लेक्चर था ऑफलाइन क्लासेस के कारण प्री रिकॉर्डेड होता था, इसलिए इस विषय पर मैंने चर्चा नहीं की है, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उसी दौर में यानी कि 20 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आए हुए थे हमारे यहां एंटोनिया गुतारेस, दोनों ने संयुक्त रूप से एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था मिशन लाइफ। याद रखिए, नाम है मिशन लाइफ, ये लॉन्च किया था मिशन लाइफ। सामान्य तौर पर तो हम यही कह सकते हैं कि जीवन के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वह मिशन लाइफ होगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए कि दुनिया भर के अवसाद की स्थितियां हो रही हैं, मानसिक संतुलन लोगों का खराब हो रहा है, तो इसे दूर करने के लिए भी मिशन लाइफ लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, बारीकी से इस बात को स्वीकार करना होगा, अपने दिमाग में डालना होगा कि जो मिशन लाइफ है इसका जो संबंध है वो पर्यावरण से है, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, या इसे आप यूं कह सकते हैं कि हम अपनी जीवन शैली को कैसा बनाएं कि वह पर्यावरण के अनुकूल हो, वह धारणीय हो। इसका साफ मतलब है कि यह पर्यावरण से सीधे सीधे संबंधित मिशन है, जिसे आप एक प्रकार से कार्य योजना भी कह सकते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद आप जानते हैं कि 7 से 18 अभी जो नवंबर है उसमें मिस्र में COP27 की बैठक होने वाली है। इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये शब्द सुनने में आया है। COP26 यानी कि ठीक इससे पहले जो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक होती है, जो 26वीं जो बैठक है वो ग्लासगो में हुई थी, उसमें बकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइफ मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। और आप देखिए कि अभी चूंकि मिस्र में सम्मेलन होने जा रहा है 27वां, तो उससे पहले भारत में इसे बहुत विस्तार के साथ लॉन्च किया गया है। तो जाहिर है कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भारत की जीवन शैली रही है इस मायने में अद्भुत रही है, अद्भुत इस रूप में कि शुरू से ही हमारे यहां जो चिंतन हुआ है, या हमारी आप चाहे दार्शनिक पद्धति देख लीजिए, चाहे आप हमारे यहां की परंपराएं देख लीजिए, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, सभी में आपको पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की बात कही गई है। यहां तक कि आप हमारे धार्मिक परंपराओं को देख लीजिए, हमारे कहने का मतलब है भारत की धार्मिक परंपराओं को देख लीजिए, हमेशा आपको पर्यावरण के साथ उसका एक संतुलन दिखाई देगा। पर्यावरण के शोषण पर आधारित न तो हमारी अर्थव्यवस्था रही है, न हमारी जीवन शैली रही है, न हमारी दार्शनिक पद्धतियां रही हैं, और न ही हमारी परंपराएं रही हैं। बल्कि सच यह है कि परंपराओं के जरिए, धार्मिक पद्धतियों के जरिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है, जागरूक किया गया है। हम नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, जीवों की पूजा करते हैं, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन शैली को ढालने की ही प्रक्रिया है। और धर्म में अगर आप किसी को शामिल कर देते हैं, परंपराओं में किसी को शामिल कर देते हैं, तो उनके प्रति हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल ही बदल जाती हैं। और हमारे यहां तो पृथ्वी सूक्त लिखा गया है, पृथ्वी सूक्त, जिसमें 100 से भी अधिक श्लोक हैं और जिसमें पृथ्वी माता की प्रार्थना की गई है। पृथ्वी को हमने माता माना है। आप देखिए कि अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं या बहुत से घरों में आपको मिलेगा कि वो सुबह जब उठते हैं, सोकर उठने के बाद जमीन पर पैर रखने से पहले या जमीन पर पैर रखकर ही सबसे पहले वो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। अगर आप पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं, पृथ्वी को आपने माँ मान लिया, तो पृथ्वी पर जो भी कुछ भी है, पूरी की पूरी प्रकृति पृथ्वी पर है, सीधी सी बात है कि वह भी हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं। तो पहली बात हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हमारी प्राचीनतम शैली बेसिकली मिशन लाइफ की ही शैली रही है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होता चला गया, अर्थव्यवस्था के स्वरूप बदलते चले गए, हम रेट रेस में शामिल हो गए, हम ही क्या पूरी दुनिया रेट रेस में शामिल हो गई, जिसे आप आर्थिक विकास कह लीजिए, वैसे वैसे पर्यावरण के साथ जो हमारा रिश्ता था वो कहीं ना कहीं शोषक और शोषित का लगातार बनता चला गया और उसके परिणाम स्वरूप आज हम सब देख रहे हैं। देखिए, जब भी जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात की जाती है, पृथ्वी को बचाने की बात की जाती है, तो उसमें हम अक्सर क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम जो गैसेस निकल रही हैं उन्हें कम करें, प्रदूषण से कैसे मुक्ति पाएं, इन्हीं सब की बात होती है। लेकिन ये जो मिशन लाइफ है, आप देखिए कि वो जीवन शैली की बात कर रही है, कि वो सब चीजें तो आप करते रहेंगे लेकिन केवल उसी से ही बात नहीं बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन करें। और मुझे लगता है कि भारत ही दुनिया में वो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है जो इसका नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि उसके पास इसकी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, साहित्य के रूप में भी, धर्म के रूप में भी, दर्शन शास्त्र के रूप में भी, जीवन शैली के रूप में भी। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले फिर बाकायदे जो जीवन शैली के लिए जो चीजें अपनाई जानी चाहिए, जो स्टेप होने चाहिए, उसमें 75 जीवन शैलियों को लेकर के एक लिस्ट जारी की गई है, केंद्र सरकार ने जारी किया है 75 जीवन शैली के अभ्यास, यानी कि हमें ये करने चाहिए। और ये जो 75 शैलियां हैं, इनको 7 भागों में बांटा गया, 7 श्रेणियों में। ऊर्जा के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पानी के साथ हम कैसे रहना सीखें, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके साथ हम कैसे व्यवहार करें, कैसे हमारी किस तरह की हमारी खाद्य प्रणाली हो, यानी कि खान पान हमारा कैसा हो, कैसे हम कम से कम पानी का उपयोग करें, कैसे हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और यहां तक कि ई कचरा का कैसे उपयोग करें, कम से कम इस तरह का काम करें कि कम से कम ई कचरा उत्पन्न हो, और अगर होता भी है, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उनके साथ हम क्या करें। इनमें जो तथ्य रखे गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे आप सबकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा। जैसे यह है कि हम सब फ्रिज का पानी पीते हैं, गर्मी के दिनों में पीते होंगे आप भी, आदत सी हो गई है। लेकिन कभी घड़े का पानी पी करके देखिए, ताजा घड़ा लीजिए, उसका पानी पी करके देखिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग ताजे घड़े का पानी पीते हैं, किसी भी मायने में आपके फ्रिज के पानी से कम ठंडा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ताजे घड़े का पानी पियेंगे, या घड़े का ही पानी कह लीजिए, जब पियेंगे तो उसमें आपको एक सौंधापन का स्वाद मिलेगा, अच्छा लगेगा, गला कभी खराब आपका होगा ही नहीं। करके देखिए, पहले यही करते थे लोग, अब भूल गए। घड़े का भी इस्तेमाल होगा और सीधी सी बात है कि उसमें ऊर्जा भी नहीं लगेगी कि आप उसमें बिजली चली गई तो दिक्कत हो रही है। तो कूलिंग वाटर की जगह देखिए कि क्या इस्तेमाल, क्या कहा गया है कि आप जो है मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए और उसे पीने का काम कीजिए, इस तरह की बातें रखी गई हैं। घरों में, चाहे स्कूल हो, चाहे कार्यालय हो, वहां बकायदे जो वर्षा का जल होता है उसका संचयन किया जाए। अगर हम उसका संचयन करेंगे तो जो पानी के अभाव जो में से हम जूझते हैं, आप देखिए कि गर्मी के दिनों में क्या हालत हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और सीधी सी बात है कि हमें फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है उसे नहीं निकालना पड़ेगा। पानी जो जीवन का आधार होता है, सोच करके देखिए कि उसका ही हम संचयन नहीं कर पा रहे हैं। जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल्ड उपयोग किया जाए, चलिए वो तो संस्थान उसके रिसाइकल्ड उपयोग करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात कही गई है और बड़ी प्यारी सी बात है, वो ये है कि जो हम लंच बॉक्स रखते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्स रखते हैं, कितना अच्छा हो कि उसकी जगह स्टील के लंच बॉक्स रखने लगे। एक बार आपने स्टील का लंच बॉक्स ले लिया तो पता नहीं कितने साल चलेगा, प्लास्टिक हर साल टूटते रहते हैं तो प्लास्टिक का कम इस्तेमाल होगा। यहां तक कहा गया है कि अगर आपको पौष्टिक भोजन लेना है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि किचन गार्डन बना लें, किचन गार्डन, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसा करता हूं, छत पर मैंने किचन गार्डन बना रखा है और क्या स्वाद होता है ऑर्गेनिक सब्जियों का, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक बार करके देखिए। और इतनी जगह तो सबके पास होती ही है कि कुछ जब किचन गार्डन बनाए जा सके, अगर नहीं होता है तो चलिए कुछ कोई बात नहीं, लेकिन एक उपाय सुझाया गया है। यहां तक कहा गया है कि जो आपका जो भोजन होना चाहिए वो स्थानीय जो पैदावार है उस पर आधारित होना चाहिए और मौसम के अनुकूल होना चाहिए। बारहों महीने हम गोभी खा रहे हैं, क्या गोभी सच में बारहों महीने पैदा होती है? गोभी तो अब बस आने वाली है, गोभी का जो सीजन है वो अब है, लेकिन आपको बारहों महीने गोभी खाने को मिलेगी? तो यहां जो सुझाया गया है स्वस्थ जीवन शैली के लिए कि नहीं, जो मौसमी जो सब्जियां हैं आप उन्हें ही खाएं, और यहां तक कि जो आपके सब्जी के बाद में जो कटी फटी जो चीजें बच जाती हैं हम फेंक देते हैं कचरे में, तो उसके लिए भी कहा गया है कि नहीं, उनको बकायदे मवेशियों को खिलाइए। पत्तियां बच गई, डंठल बच गए, छिलके बच गए, उन्हें मवेशियों को खिलाइए। और मॉडर्न लाइफ के लिए कहा गया है कि पेन ड्राइव हम यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, उसकी जगह क्लाउड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत विस्तार के साथ ये जो 75 जीवन शैलियां बताई गई हैं दोस्तों, बहुत ही अद्भुत हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ें, अपने घर वालों को भी बताएं और अपने जीवन को इसके अनुकूल ढालने की कोशिश करें। ऐसा किया ही जाना चाहिए, ये न केवल हमारे अपने ही हित में है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी हित में होगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।